तीसरा प्रश्न, भगवान क्या मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती? गिरीशचंद्र, यह प्रश्न तभी उठ सकता है जब मौत से तुम बहुत डरे हो। मौत पर विजय पाने की जरूरत क्या है? मौत तो विश्राम है, क्या विश्राम पर विजय पानी? क्या कभी विश्राम नहीं करना? दौड़ते ही रहना है, धापते ही रहना है। मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर विजय पाओ, मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन की आपाधापी के बाद तुम्हें विश्राम का क्षण। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पाठ लिए हो पुराने जीवन से तो नए जीवन में उनका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी पुरानी आदतें छोड़ने, पुरानी देह के छोड़ने, पुराने ढंग ढांचे को छोड़ने का। मौत तो एक महा अवसर है। मैंने सुना है जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी, कहानी ही मानता था, नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था उसने कि कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाया रखना, जहां से गुजरो पता लगाया रखना कि वो झरना कहां है। और आखिर वो एक दिन घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पे चारों तरफ पहरा लगवा दिया, अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खोह में, एक छोटी सी गुफा में वो झरना था। भीतर प्रवेश किया, बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। इस स्फटिक मणि जैसी स्वच्छता की बात तो सुनी थी मगर देखी नहीं थी, आज पहली बार देखी। सामने अमृत को देखकर फिर कोई रुके जल्दी से, अंजलि भर के पीने को ही जा रहा था कि कोई आवाज गूंजी कि रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में, एक कौआ बैठा था। उस कौए ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख कथा सुन ले, फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौआ और बोले, भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें कहना है? उस कौए ने कहा, मुझे ये कहना है कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा मैं भी सिकंदर हूं कौओं में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था और अंततः मैंने ये झरना पा लिया और मैंने जी भर के पी लिया। इस बात को हुए सदियों बीत गई, अब मैं मरना चाहता हूं और मर नहीं पा रहा हूं। सिर पटकता हूं, चोट नहीं लगती। पहाड़ से गिरता हूं, जिंदा का जिंदा। आग में चला जाता हूं, पंख नहीं जलते। जहर पीता हूं, असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है। मैं थक गया, बहुत थक गया। अब कब तक जीता रहूं? किस लिए जीता रहूं? अब ये जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती। अगर तुम्हें कुछ पता हो ऐसी किसी जगह का जहां अमृत को काटने वाली कोई दवा, कोई एंटीडोट, तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना फिर मर ना सकोगे। और कहते हैं सिकंदर ने दो क्षण सोचा और फिर ऐसा भागा वहां से। भागा इसलिए कि कहीं किसी प्रलोभन में पी ही ना ले, ऐसा भागा कि उसने लौट के पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता था उस झरने की, तो वो बात नहीं करता था, वो कहता उसकी बात ही मत करो, उस झरने की मैं बात ही नहीं सुनना चाहता। गिरीश चंद्र, तुम पूछते हो क्या मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती, क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है, जीवन को नित नया करने की व्यवस्था है। मौत से गुजर के जीवन नित नूतन होता है, मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत है ही, अब किसी और अमृत की जरूरत नहीं है। और मौत को जीत के क्या करोगे? मगर मौत से आदमी भयभीत है और भय के कारण मौत को जीतना चाहता है, और सदियों से आदमी ने चेष्टा की, एक से एक मूर्खतापूर्ण चेष्टाएं की गई। अभी अमेरिका में एक नई से नई चेष्टा चल रही, क्योंकि अमेरिका में अब साधन उपलब्ध हो गए, तो कुछ लोग मर जाते, वो वसीयत कर जाते कि उनकी देह को बचाया जाए। देह को बचाना बहुत महंगा मामला है, $10,000 प्रतिदिन का खर्च होता है, $1,00,000 रोज। देह बिल्कुल ना सड़े, जैसी की तैसी रहे, तो उसको बहुत तापमान को नीचे गिराकर, बर्फ से भी बहुत नीचे तापमान को गिराकर बर्फ की चट्टानों में दबा के रखना पड़ता। एक क्षण को भी अगर गर्मी पहुंच गई, जरा सी भी गर्मी पहुंच गई, तो देह में सड़ान शुरू हो जाएगी, और ये मरने के मिनटों के भीतर हो जाना चाहिए। इस समय अमेरिका में कोई 10 लाशें इस तरह बचाई जा रही, क्यों? वो करोड़पतियों की लाशें हैं, वो मरते वक्त वसीयत कर गए कि उनकी लाश बचाई जाए। किस आशा में? क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 10 या 15 वर्ष के भीतर हम वो तरकीब खोज लेंगे जिससे मुर्दे को पुनः जिलाया जा सकता है। तो 10 से 15 साल का सवाल है, 10-15 साल अगर लाश बची रही और तरकीब खोज ली गई तो मुर्दों को जगाया जाएगा, उसमें ये मुर्दे भी जाग जाएंगे। $1,00,000 रोज का खर्च, कोई 4 अरब रुपया प्रतिवर्ष का खर्च, मगर जिनके पास सुविधा है वो 15-20 साल का इंतजाम कर सकते हैं। समझ लो कि आज से 20 साल बाद एक आदमी इस तरह जिंदा भी हो गया, फिर क्या करेगा? पहले भी क्या किया था? पहले भी जिंदा रहा था, पहले क्या किया था? जो उपद्रव पहले किए थे वही फिर करेगा? कोई बुद्धिमत्ता तो आनी चाहिए, कोई बोध तो पैदा हो नहीं जाएगा। और देह अगर बच भी गई तो भी बूढ़ी होगी, सड़ी होगी, करोगे क्या उसका? और ये भी समझ लो कि आज नहीं कल तुम्हारे शरीर के सारे हड्डी मांस मज्जा को भी बदला जा सके और नया किया जा सके, तो भी क्या होगा? मैंने सुना है एक आदमी बूढ़ा हो गया, बहुत धनपति था, उसने बुढ़ापे में शादी कर ली। अब बुढ़ापे की शादी, खुद की उम्र 90 साल और लड़की की उम्र 19 साल, डॉक्टरों से कहा कि कुछ करो, डॉक्टर भी क्या करें, मगर डॉक्टर इंकार भी नहीं कर सकते, विशेषज्ञ की एक मुसीबत होती, वो ये तो कह नहीं सकता कि मैं नहीं जानता, नहीं तो उसका अज्ञान प्रकट होता। उसने कहा मत घबराओ, उसने सारा का सारा यौन यंत्र बदल डाला, एक बंदर का ऑपरेशन करके, तुम जानते हो हिंदुस्तानी बंदर अमेरिका भेजे जा रहा है, बड़ा एक्सपोर्ट चलता, हमारे पास एक्सपोर्ट करने को कुछ और है भी नहीं। चलो हनुमान जी के वंशजों को एक्सपोर्ट करो, इससे धर्म का भी प्रचार होगा। ये बंदर जाएंगे तो हनुमान चालीसा भी ले जाएंगे, और ये बंदर कोई साधारण बंदर तो नहीं, रामचंद्र जी की सेवा में रहे। चलो इसी तरह हिंदू धर्म फैलेगा। तो एक बंदर का पूरा यौन यंत्र काट के उस आदमी का ऑपरेशन करके उसने यौन यंत्र बंदर का लगा दिया। बूढ़ा बहुत खुश हुआ, जवानी फिर अनुभव होने लगी। 9 महीने बाद पत्नी को बच्चा हुआ। बूढ़ा बाहर बैठा है एकदम उत्तेजित, बंदर जैसा उत्तेजित, बैठते ही नहीं, खड़ा हो जाता है। डॉक्टर कहते बैठो भाई, थोड़ा वक्त लगेगा, पैदा होगा तभी होगा, मगर वो फिर उठाता है, दरवाजा खोलता है बंद करता है, अखबार खोलता बंद करता है, बंदर की हालत उसकी। आखिर डॉक्टर बाहर आया, उसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा जरा ठहरो भी तो, तुम्हारा बच्चा पहले सैंडलियर पे चढ़ गया, वो उतरे नीचे तो हम बताएं क्या हुआ, वो सैंडलियर से नहीं उतर रहा। अब बंदर का यंत्र लगाओगे तो क्या तुम बच्चे से आशा करते हो कि वो कुछ और होंगे? मगर ये चल रही कोशिश कि आदमी के यंत्र को बदल दो, उसकी हड्डियां बदल दो, मांस मज्जा बदल दो, ये भी चलेगा, मगर इस सबसे भी क्या प्रयोजन है? असली सवाल ये नहीं है कि मौत को कैसे विजय किया जाए, असली सवाल ये कि जीवन कैसे जिया जाए। क्या फिजूल की बात पूछते हो? अभी जिंदा हो, इस जिंदगी का क्या उपयोग हो सके, कैसा सदुपयोग हो सके, ऐसी कुछ बात पूछो, ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिए इस जीवन को समग्रता से, कि फिर दोबारा देह में ना आना पड़े। ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिए परिपूर्णता से, कि ये पृथ्वी की परीक्षाओं में फिर ना आना पड़े। यही तो जानने वालों ने पूछा है, और जानने वालों ने समझाया है और जताया है। उपनिषद यही पूछते हैं, बुद्ध यही पूछते हैं, बुद्ध यही समझाते, उपनिषद यही समझाते, कुरान और बाइबल आखिर क्या समझा रहे हैं? एक ही बात समझा रहे हैं कि देह में होना एक विराट आत्मा को एक बहुत संकीर्ण से स्थान में बंद करना, ये कारागृह है। तुम चाहते हो कारागृह शाश्वत हो जाए, इन सींचों के बाहर कभी ना निकल सको। हंसा उड़ना नहीं है मानसरोवर की तरफ, हंसा उड़चल वादेश, उस दूसरे देश की तलाश नहीं करनी, इसी किनारे रहना सदा सदा। और पाया क्या है इस किनारे, खोया है सिर्फ, नहीं मृत्यु को शत्रु मत मानो। मृत्यु के दो उपयोग हैं, जो आदमी अंधे की तरह जिया, ध्यान विहीन जिया, उसके लिए भी मृत्यु मित्र है, क्योंकि वो उसे नई देह देगी, फिर नया बचपन देगी, फिर नई ताजगी देगी, फिर नई बुद्धि देगी, ताकि फिर जीवन का अनुभव कर सके। इस बार चूक गया, अगली बार न चूके, इस आशा में परमात्मा दूसरा अवसर देगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन को समग्रता से जिया, ध्यानपूर्वक जिया, जीवन को समाधि में रूपांतरित कर लिया, उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी, उसके लिए तो परमात्मा में निमग्न होने का अवसर मिलेगा। वह तो उसके विराट आकाश में लीन हो जाएगा, जैसे गंगा सागर में गिर के लीन हो जाती, उस लीनता का आनंद लेगा। वह आनंद शाश्वत है, सच्चिदानंद, वहां सत्य है, वहां चैतन्य है, वहां आनंद है। देह नहीं होगी, सिर्फ बोध मात्र होगा, चिन्ह मात्र होगा। और अगर तुम्हें यही वापस आना है तो घबराते क्यों हो? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहां है? एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण और कुछ है, रूप पल पल पर बदलकर और कुछ है, और कुछ है, यह अखंड विधान जग में रंच भी झुकता कहाँ है? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है? यदि तुम्हारे वक्ष में है सांस, बाहों में भरा बल, काल सरता की लहर पर आंख दो गतिचित्त निर्मल, सिंधु समझो बिंदु पर वह, बिंदु में चुकता कहाँ है? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है? दुख केवल दुख ही यदि सत्य है तो और क्या है? अश्रु सिंचित हास पुलकित जिंदगी फिर और क्या है? जिंदगी का मोल केवल मौन से चुकता कहाँ है? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है? गिरीश चंद्र ऐसे क्या घबराए? न मौत रुकती न जन्म रुकता। मौत और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इधर मरे उधर जन्मे। जन्म हो गया तो मौत होगी, मौत हो गई तो जन्म होगा, सिर्फ उन थोड़े से लोगों को छोड़कर जो जाग के मरेंगे। जो जाग के मरेंगे वो न तो जन्मते न मरते, वो शाश्वत को पा लेते हैं। जिसका कोई जन्म नहीं मृत्यु नहीं, उस शाश्वत का नाम ही परमात्मा है। गिरीशचंद्र पाओ परमात्मा को, मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? क्या हाथ लगेगा? 70 साल की जिंदगी होगी 700 साल की, 700 साल की होगी 7000 साल की, क्या होगा? तुम वही दोहराए जाओगे ना। इतना दोहराने से भी तुम्हें समझ नहीं आती, इन्हीं गड्ढों में फिर गिरोगे, यही भूलें फिर करोगे। नहीं मौत पर विजय नहीं पानी, जीवन पर विजय पानी। और जीवन पर विजय कौन को मिलती? उसको मिलती जो जीवन को जान लेता है। हम अपने से ही अपरिचित जी रहे हैं, यह भी पता नहीं कि मैं कौन, और मौत को जीतना चाहते। डुबकी मारो इसमें कि मैं कौन हूं, पूछो एक प्रश्न सतत, मैं कौन हूं, और इसका उत्तर खोज लो। और उत्तर ख्याल रखना उधार ना हो, मेरा उत्तर तुम्हारे काम का नहीं, न बुद्ध का, न महावीर का, न कृष्ण का, न क्राइस्ट का, किसी का उत्तर तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें अपना उत्तर खोजना होगा। अपना सत्य ही मुक्त करता है, दूसरों के सत्य सिद्धांत बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं, दूसरों के सत्य तो बंधन बन जाते हैं।